ஜனா வல்லபாரியோபி ஜனா
అనంత కోటి వైష్ణవునికి ప్రాయుడు బ్రహ్మానందయుడు
All glories to the assembly of deities. 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 सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैक षट्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या लोकैक दृक्पदा सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो कलिदन्तादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपटया प्रेमवर्षाक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णमोऽस्तु मे मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महादना मनस्तरक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तु मे असाधु साधुतादायनोच्चतारक अनमुंस कदाचिन्मा प्रेम्ना वृत्कंठयोस्पुरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायमुदीरये श्रीमद् भागवतम दसवां स्कंद अध्याय 11 तीसवां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। उलूखलम विकर्षन्तम् नामना बद्धम बद्धम च बालकम् कस्येदं कुत आश्चर्यम् उत्पात इति कातरा लूखलं विकर्षन्तम् नामना बद्धम च बालकम् कस्येदं कुत आश्चर्यम् उलूखलं विकर्षन्तम् नाम्ना बद्धं च बालकम् कस्येदं कुत आश्चर्यम् उत्पात इति कातरा माता है
आश्चर्यम्
ulu kalam okliko vikarshantam khinchte hue damna rasi se baddamcha tata udar se bhaindi balakam krishna ko kasyam kiska idam yaha kutaha kahan se aashyaryam ye adbhut ghatnaye utpataha upadrav iti is prakar katara atyadhik shubh anuvad aur thakur shri prabhupada dwara कृष्ण रस्सी द्वारा ओकली से बंधे थे, इसे वे खींच रहे थे, किंतु उन्होंने वृक्षों को किस तरह गिरा लिया, वास्तव में किसने यहाँ किया, इस घटना का स्रोत कहाँ है, इन आश्चर्यजनक बातों को सोच सोच कर सारे ग्वाले सशंकित तथा मोहग्रस्त थे। मेरे पीछे दोहराए, कृष्ण रस्सी द्वारा ओकली से बंधे थे, जिसे वे खींच रहे थे, किंतु उन्होंने वृक्षों को किस तरह गिरा लिया, वास्तव में किसने यहाँ किया, इस घटना का स्रोत कहाँ है, इन आश्चर्यजनक बातों को सोच सोच कर सारे ग्वाले सशंकित तथा मोहग्रस्त थे। तत्र श्रद्धा द्वारा सारे ग्वाले अत्यंत क्षुब्ध थे, क्योंकि बालक कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच खड़ा था, और यदि संयोगवश ये वृक्ष उस पर गिर जाते तो वह चटनी हो जाता, किंतु वह जैसे का तैसा करा था, और फिर भी घटना घट गई, तो फिर यह सब किसने किया, ये सारी घटनाएं इस आश्चर्यमय ढंग से कैसे घटी, उनके क्षुब्ध तथा मोहित होने का कारण यही शंकाएं थी, किंतु उन्होंने सोचा कि दैववश कृष्ण सुरक्षित है, अतः उसे कुछ भी नहीं हुआ। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वभावान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरोन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश श्रीरूपं साम्भ्रजातं सहगणरघुनादान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहजललिता श्रीकान्वितं सा हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त सुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी विशवांसुते देवी प्रणनामी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langayate mrim, vatamaham vande sri gurum nilatarinam, vatamaham vande sri gurum nilatarinam. Ulukalam vikarshantam dhamavadam chabalakam kasyedam putasyaryam utvata iti katara. Krishna rassi dvara okli se bandhe the jise ve khinch rahe the, kintu unhone vrukshon ko kis tarah gira liya, vastav mein kisne yahan kiya, is ghatna ka srot kahan hai. In aashcharyajanak baaton ko soch soch kar sare gwale sasankitata mogast te. Hare Krishna, main yahan ke upasthit vachanon se aashirvachan lena chahta hu. Bhagavatam koi sadharan granth nahi bolne ke liye, iske liye aashirvachan lena chahta hu. Aur mera hindi mein thoda kuch troti hogi, thoda aap saar lijiye, kyunki mera pratham bhasha nahi hai hindi. फिर भी मैं सोचा कि हिंदी में बोलना अच्छा रहेगा, ना कि हिंदी इंग्लिश थोड़ा तकलीफ कठिनाई हो सकती है. तो इस अध्याय का नाम है कृष्ण की बाल लीलाएं. तो भगवान की लीलाएं ना बहुत आसान से समझ में नहीं आती है. अगर कोई भक्त है वो समझ सकता है लीलाओं, अन्यथा कोई न समझ सकते हैं. फिर ब्रह्म संहिता बोला गया वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तो. भगवान केवल भक्तों द्वारा समझे जाते हैं, अन्यथा इतना भी प्रयत्न करें समझ नहीं सकते. तो हमारे लिए प्रभुपाद की कृपा है, उन्होंने भागवत ग्रंथ का अनुवाद और तात्पर्य देकर हम लोगों को ये आसान कर दिया. भागवत एकमात्र ग्रंथ है जिसे पढ़ने से कृष्ण प्रेम उद्धृत होता है हृदय से. वैसे तो कृष्ण प्रेम है अंदर छिपा हुआ, लेकिन इस ग्रंथ का अध्ययन करने से भगवत प्रेम उत्पन्न अंदर से उत्पन्न हो जाता है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बाल लीलाओं को समझने में कठिनाई होती है. तो भगवान जब भी बड़े होकर लीलाएं करते हैं उनको समझना और भी कठिनाई हो जाती है. तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखते हैं हम एक ग्वाल है जो भगवान के परिकर थे. तो वो उनके मन में कई प्रश्न आ रहे थे कि कैसे हुआ ये घटना. अब कृष्ण बहुत छोटे थे, फिर भी उन्होंने उकल को खींचा और बड़े बड़े जो पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे वो, तो उनको गिरा दिया. मतलब इतना आसान नहीं है. जैसे मशरूम बोलते हैं अंग्रेजी में, या नहीं तो जैसे बड़ा हाथी होता है, हाथी कमल फूल को निकालना बहुत आसान है उसको, कमल फूल को. तो उसी तरह भगवान ने इस बड़े बड़े पेड़ों को ऐसे खींचते गिरा दिया. तो अगर बाहर की दृष्टि से हम देखा गया तो सामान्य दृष्टि से ये असंभव है, लेकिन भगवान के लिए कोई भी असंभव नहीं है. तो यहाँ पर जो ग्वाल बाला जो मोहग्रस्त थे, हमें ये समझना है कि योग माया के द्वारा वो मोहग्रस्त हुए, महामाया के द्वारा नहीं. जो महामाया है इस सृष्टि में भौतिक संसार में लोगों को मोहग्रस्त कर सकती है, लेकिन भगवान के जो परिकर होते हैं उनको वो मोहग्रस्त नहीं कर सकती है. लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भगवान के परिकर है ये मोहग्रस्त थे, लेकिन योग माया के द्वारा. हाँ, क्योंकि योग माया ऐसे लीलाएं रचाती है, ऐसे स्थिति कि वो भूल जाते हैं कृष्ण भगवान है.
और भगवत प्रभुपाद एक जगह बताते हैं, भगवान इतने बड़े हैं, इतने मतलब ग्रेट बोलते हैं हम अंग्रेजी में, इतने वो है मतलब उनको कोई समझ नहीं पाता और कितना भी प्रयत्न करें उनको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर भगवान से प्रेम करना शुरू करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाता है। और प्रेम करना है ये जीवन का लक्ष्य है एक्चुअली, उसको समझते रहेंगे अगर प्रेम नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या फायदा है। तो मनुष्य जीवन है भगवान को प्रेम करने के लिए। तो कृष्ण किताब में प्रभुपाद अद्भुत कृष्ण एक अध्याय है वहाँ पर बताते हैं, मतलब ये यहाँ पर उस चर्चा में यहाँ पर एक जगह में ग्वालों को नंद बाबा बताते हैं, वो लोग पूछते हैं कि कृष्ण अद्भुत कार्य कर रहे हैं, जैसे वहाँ खुले नहीं पूतना को मार डालते हैं, इस तरह एक असुर के बाद दूसरे असुर को वो मारते जाते हैं। ये क्या है कृष्ण, ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं दिख रहे हैं, हो सकता कोई देवता हो या स्वयं नारायण हो। तो नंद महाराज उन्हें बताते हैं कि गर्ग मुनि आकर उनके बारे में बताते कृष्ण के बारे में, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार धारण करते हैं, इस तरह पूरा बताते हैं। तो उस समय एक ग्वाल वाले ऐसे बोलते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं, तो ग्वाल वाले बोलते हैं, जो कृष्ण इतने दयालु सुंदर तथा करुणापूर्ण हैं वे हमारी रक्षा करें। जब क्रुद्ध इंद्र ने मूसलाधार वर्षा के साथ उपल दृष्टि तथा प्रबल झंडा को आदेश देकर भेजा तो इन्होंने तुरंत हम पर दया की और जिस प्रकार एक बालक कुकर्मुत्ता पुकार लेता है उसी तरह गोवर्धन पर्वत उठाकर हमें तथा हमारे परिवारों गांवों तथा गृहस्थी को बचा लिया। उनकी कृपा दृष्टि हम पर तथा हमारे गांवों पर बनी रहे, हम अद्भुत कृष्ण की छाया में शांतिपूर्वक जीवित रहे। तो ये हम देख सकते हैं कि ग्वाल बाला है कि किस तरह भगवान की शरण लेते हैं। ऐसे ऐसे मन में आता है, यहाँ पर जब भी मीरा रोड में रहते हैं उसे गिरधारी है, राधा गिरधारी, तो राधा गिरधारी की कृपा से यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, कोई बीमार भी पड़ा है हॉस्पिटल जा सकता है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं रखे अपने भक्तों को, कभी भी रक्षा करने के लिए भगवान निकट हॉस्पिटल भी बना दें, ऐसे नहीं कि 50 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दूरी पर जाए और हॉस्पिटल भर्ती हो जाए। तो ये है एक्चुअली जीवन का लक्ष्य, भगवान का शरण लेना। तो आज का दिन श्री रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिन है, क्योंकि एक प्रश्न पूछा जाता है कि रामानुजाचार्य को कि भगवान मन और बुद्धि से परे हैं, उन्हें कैसे जान सकते हैं। तो रामानुजाचार्य बताते हैं कि भगवत भक्तों का सेवा करने से इस हम भगवान को समझ सकते हैं। तो ये हमारे वैष्णवाचार्यों में और बहुत बड़े स्तर पर है, जैसे चार संप्रदाय हैं हमारे वैष्णव में, रामानुज मतलब लक्ष्मी संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है और ब्रह्म संप्रदाय है। ये चार वैष्णव संप्रदाय इस कलयुग में पुराणों में दिए गए हैं। तो हम लोग जो वैष्णव संप्रदाय हमारा है ये ब्रह्म संप्रदाय है, उसके बाद श्री चंद्रमा प्रभु आए थे, उसके बाद हमारा ऐसा बोला जाता है ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय बोला जाता है थोड़ा हटकर। तो जो श्री यानी लक्ष्मी देवी उनके संप्रदाय में जो मेन आचार्य है वो है रामानुजाचार्य। जैसे हमें अभी अगला 10,000 सालों के लिए प्रभुपाद है विशेष, तो उसी तरह 1,000 साल पूर्व रामानुजाचार्य का आविर्भाव हुआ था। ऐसा बोला जाता है कि जब ये बौद्ध मत आया था तो लोग लोग एकदम भगवान को भूल गए थे, इवन वेदों को भी, क्योंकि ऐसा बौद्ध मत में लिखा गया है कि वेदों को भी वो लोग नहीं मानते हैं। इसके लिए हमारे आचार्यगण बौद्ध मत को स्वीकारते नहीं हैं, क्योंकि ये ऐसा है कि वेद जो है ना, वेद के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। वेद वेद एक माँ की तरह है, जैसे माँ बता सकती है हमारे पिता कौन है, चाहे कितना भी हम प्रयत्न करें बाहर किसको भी पूछे वो संभव नहीं है, केवल माँ के द्वारा पिता को समझा मतलब पता किया जा सकता है। उसी तरह केवल वेद के द्वारा भगवान को हम समझ सकते हैं। तो इसी कारण बौद्ध मत को वैष्णवगण मानते नहीं। तो बौद्ध मत को हटाने के लिए शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ, लेकिन शंकराचार्य ने क्या किया, उन्होंने बौद्ध मत को ही स्वीकारा, लेकिन इनडायरेक्टली यू नो परोक्ष रूप से उन्होंने बौद्ध मत को स्वीकारा, लेकिन वेदों को उन्होंने छोड़ दिया। भगवान को आस्तिक मतलब नास्तिक मतलब भगवान को निराकार बोल दिया, जैसे बौद्ध बोलते हैं शून्यवादी, जैसे प्रभुपाद को निर्विशेष शून्यवादी बोलते हैं, तो बौद्ध मत वाले शून्यवादी भगवान को शून्य मानते हैं, और मायावादी या शंकराचार्य पंथ के लोग उन्हें निराकार मानते हैं। तो ये उन्होंने एक स्टेप डाल दिया आगे शंकराचार्य, तो उसके बाद फिर भगवान ये आचार्यों को भेजे, जो चार संप्रदाय के आचार्य हैं। तो रामानुजाचार्य पहले आए थे, उसमें से रामानुजाचार्य आए थे। तो रामानुजाचार्य 1000 साल पूर्व दक्षिण भारत में उनका आविर्भाव हुआ था। तो ऐसा है कि आचार्यों का उनके जीवन से उनके लक्षण से हम समझ सकते हैं वो नित्य भगवान के नित्य परिकर है। जैसे प्रभुपाद जी के हम देख सकते हैं, प्रभुपाद बचपन से ही वो कभी भगवान को भूले नहीं। तो ये कुछ असाधारण लक्षण होते हैं आचार्यों के। तो लेकिन उस समय ज्यादातर मायावादी थे, तो रामानुजाचार्य को एक मायावादी के यहाँ जाकर अभ्यास यानी अध्ययन करना पड़ा। उनका नाम था यादव प्रकाश। तो क्योंकि मायावादी थे तो लेकिन शास्त्र का अध्ययन करना ही पड़ता है कहीं से कहीं, लेकिन उस समय वैष्णवगण ज्यादा नहीं थे तो उन्हें उनके यहाँ जाकर पढ़ते थे। तो कई बार वो उनके जो उपदेशों से राजी नहीं थे रामानुजाचार्य। तो एक बार ऐसा होता है, चांडोग्य उपनिषद का एक वाक्य है, तप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी। इसका तात्पर्य है कि भगवान विष्णु या कृष्ण के जो आंख है कमल के भांति है। एक्चुअली देखा गया तो इस संसार में भगवान के अंगों को किसी वस्तु से हम वो नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते हैं, असंभव है। लेकिन भौतिक संसार में लोग समझ नहीं पाते, इसके लिए उपमा दिया जाता है, एनालॉजी बोलते हैं अंग्रेजी में, कि कोई भी चीज हम जो देख नहीं पाते, इसके लिए प्रभुपाद लिया करते थे किताब में उपमा है। जैसे भगवान का एक उदाहरण के लिए, भगवान इस संसार में आविर्भाव होता है भगवान का, फिर इस संसार से चला जाते हैं, फिर दूसरे संसार में दूसरे भौतिक इसमें उधर जाकर संसार में वो अपना लीलाएं करते हैं। तो उसको कैसे समझे, तो प्रभुपाद उपमा देते थे जैसे सूरज, सूर्य भगवान यहाँ पर अभी उदय हुए, फिर शाम को इधर अस्त हो जाते हैं, फिर आप देखेंगे पाश्चात्य देश में भगवान उधर उदय हो रहे हैं। तो सूर्य कभी अस्त नहीं होते, लेकिन अलग अलग जगह में वो उदय होते रहते अस्त होते, लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि सूर्य अस्त हो गए। तो इसी तरह भगवान की लीला है, भगवान की लीला चलती रहती है, नित्य लीला है भगवान की। तो लेकिन इस संसार में वो खत्म हो जाते हैं, दूसरे संसार में शुरू हो जाते हैं। तो प्रभुपाद इस तरह एक उपाय देकर हम लोग को समझा देते हैं। तो यहाँ पर भगवान के जो अंगों को कमल, इस संसार में अगर कोई अद्भुत चीज है, सुंदर चीज है, वो कमल है, तो कमल से तुलना करते हैं। लेकिन कमल कुछ नहीं है भगवान के, तो भगवान के अंगों के तुलना में। लेकिन हमारा बुद्धि इतना जड़ है तो हमें समझाने के लिए इसका उदाहरण दिया जाता है। तो जब यादव प्रकाश देखते हैं कि हाँ, ये बच्चा, छोटा बच्चा होते हुए भी मतलब उनका परास्त करे उन्हें, तो वो देखते हैं कि जैसे समय बीतेगा ये मेरा प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने शिष्यों को साथ में लेकर दूसरे शिष्यों को इसके लिए क्या करें। तो अंत में वो निर्णय को आते हैं कि हम रामानुजाचार्य को उत्तर भारत ले जाएंगे, जहाँ गंगा रहती है वहाँ ले जाएंगे और उनको वहीं पर कत्ल कर देंगे और लोगों को पता नहीं चलेगा। अगर कोई पूछेगा तो हम बता देंगे गंगा में बह गए। तो इस तरह उन्हें तो ले जाते हैं रामानुजाचार्य को साथ में। लेकिन उनके भाई थे गोविंददास, तो वो भी उधर जाते हैं। तो जैसे वो उत्तर भारत पहुंचते हैं तो वो लोग उसका प्लान करते हैं कि अभी हम रामानुजाचार्य को जंगल में मारेंगे। तो जैसे उनका भाई गोविंद को पता चलता है तो उनको तुरंत ये बता देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा ये लोग अपना प्लान कर रहे हैं कि आपको मारना चाह रहे हैं, तो उसी आप अभी तत्क्षण यहाँ से निकल जाओ। तो रातों रात वो भाग जाते हैं। वो लोग बहुत ढूंढते हैं ये यादव प्रक्ष और उनके शिष्य, लेकिन वो मिलते नहीं। तो जंगल में, घोर जंगल में, मतलब भयानक जंगल में वो अकेले रहते हैं। ऐसे नहीं कि वो बहुत बड़े हैं, 16 साल की उम्र के थे उस समय। तो वो चलते रहते रात हो जाता है। तो एक जगह में वो पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तो उनके मन में ऐसा आता है कि अरे घोर जंगल में हूँ, अकेला क्या करूँ। लेकिन उनको पूर्ण विश्वास था कि भगवान उनका रक्षा करते हैं। तो उस तरह वो चल कर एक पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। उस समय एक पुरुष और एक स्त्री को देखते हैं, मृगारी और उनकी पत्नी को। तो क्योंकि उनके जो यादव प्रकाश उनको मारने का योजना बनाते, इसके लिए उनका पूरा विश्वास नहीं होता किसी पर। फिर भी वो आकर उनसे पूछते, आप इस गोर, मतलब जो मृगारी आकर पूछते, इस गोर जंगल में अकेला आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो बोलते हैं कि मैं तो मतलब मेरे गांव जा रहा हूँ कांचीपुरम। तो वो बोलते हैं हम लोग भी उधर ही जा रहे हैं कांचीपुरम, जो मृगारी और उनकी स्त्री। तो फिर ऐसा हो जाता है कि वो लोग रात को वहीं विश्राम करते हैं। लेकिन वो जो मृगारी की पत्नी होती है बोलती, मुझे प्यास, बहुत प्यास लग रहा है। तो वो बोलते हैं, मृगारी बोलते हैं कि हम सुबह होने के बाद आपको पानी पिलाएंगे। तो इस तरह वो लोग आराम करते हैं और सुबह उठते ही रामानुजाचार्य दूसरे जगह पहुंच जाते हैं, यानी कांचीपुरम उनके गांव। तो देखते हैं और उनको पूछते हैं, वो लोग तो मतलब गायब हो जाते हैं, वो जो मृगारी है उनकी स्त्री। तो लोगों को पूछते हैं, अरे आप तो कांचीपुरम में आए, जो कि उनका गांव था। तो फिर वो समझ जाते हैं स्वयं भगवान ने उनको वो भोर जंगल से लेकर आकर दर्शन होते हैं। तो ये है, भगवान पर उनका पूर्ण विश्वास रहता है और भगवान उसका साथ साथ उसका बेसिकली मतलब उनको जैसे उनका श्रद्धा रहता है उस तरह उनका भगवान रक्षा करते हैं। जैसे भगवद्गीता में भगवान बोलते हैं, एता माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजाम में। जैसे हम भगवान का शरण लेते हैं वैसे भगवान हमारा रक्षा करते हैं। तो एक बार ऐसा हो जाता है, फिर वो लोग वापस आ जाते हैं और उनके जो यादव प्रकाश उनके शिष्य सब बाकी लोग, तो देखते हैं कि यहाँ पर रामानुजाचार्य जीवित है। तो कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर रामानुजाचार्य के पिताजी तो चल बसते हैं, तो उनकी माँ से वो लोग मिलकर फिर उनको बातों से बहा कर फिर उनको अपने झुंड में यानी उनको पढ़ाई के लिए बुला लेते हैं। तो ये यादव प्रकाश जो उनके गुरु थे पढ़ाने वाले, तो वो कुछ तांत्रिक विद्या भी जानते थे। तो ऐसा हो जाता है उस देश के राजा की बेटी को एक राक्षस पकड़ लेता है। तो यादव प्रकाश को बुलाया जाता है और वो बहुत प्रयत्न करते हैं वो जो 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 राक्षस को निकालने के लिए, लेकिन वो निकलता है नहीं। तो बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, फिर भी कुछ होता नहीं। तो फिर वो राक्षस बोलता है, ए मूर्ख यादव प्रकाश, कितना भी प्रयत्न करो मैं जाने वाले नहीं हूँ, लेकिन आपका शिष्य जो रामानुजाचार्य है वो आकर इस रानी के सिर के ऊपर अपने पैर रखेंगे तो फिर मैं जाऊँगी। तो फिर रामानुजाचार्य को बुलाया जाता है और उनके सिर के ऊपर जो रानी के राजा के बेटी के ऊपर सिर के ऊपर पैर रखते ही वो राक्षस निकल जाता है। तो इस तरह रामानुजाचार्य का मतलब जो ग्लोरियस या गुण फैलते हैं। और रामानुजाचार्य के उससे पहले आचार्य थे यमुनाचार्य। तो यमुनाचार्य बहुत वृद्ध हो जाते हैं उस समय, 120 साल के उसे होते हैं। तो वो चाहते हैं कोई बड़े आचार्य आकर उनके पद को स्वीकार है उनकी अनुपस्थिति में, वो जब भी चल बसते हैं। तो जब ही वो मिलना चाहते थे, लेकिन यादव प्रकाश जो है मायावादी के अंदर में रहते हैं तो इसके लिए वो उनको मिल नहीं पाते। एक बार देखते हैं तो जैसे यमुनाचार्य का तिरुभाव होता है, तो तिरुभाव होने से पहले वो अपने शिष्य को भेजते, महापूर्ण एक शिष्य का नाम था, उन्हें भेजते हैं कि रामानुजाचार्य को श्रीरंगम लेकर आना, कांचीपुरम से श्रीरंगम। तो जब जाते चार पाँच दिन में तो तब तक यमुनाचार्य का तिरुभाव हो जाता है। तो लेकिन उनका शरीर को वैसे ही रखा जाता है। तो जैसे चार पाँच दिन में जब रामानुजाचार्य आते हैं उनको मिलने श्रीरंगम, तो उनके तीन अंगूठियाँ ऐसे बंधे रहती हैं। तो रामानुजाचार्य उनको पूछते हैं उनके शिष्यों कि पहले यमुनाचार्य का उंगलियाँ ऐसे बंधे रहते थे, वो बोलते नहीं। तो रामानुजाचार्य समझ जाते कुछ उनका अपूर्ण इच्छा कुछ तो होगा, तो इसके लिए वो अपने उठी उंगलियों को ऐसा रखे हैं। तो यमुनाचार्य वहाँ पर कुछ वाउस बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी कुछ प्रतिज्ञा लेते हैं। तो पहले प्रतिज्ञा ये रहता है कि मैं भगवान विष्णु भगवान मतलब देवताओं के भी भगवान हैं, तो इसका मैं प्रचार करूंगा पूरा भारतभर। तो इस तरह वो प्रतिज्ञा लेते हैं, पहला प्रतिज्ञा, तो उनका एक उंगली खुल जाता है। तो उसी तरह दूसरा प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जैसे मायावादी लोग भी शारीरिक भाष्य लिखे वेदांत सूत्र पर, तो उसी तरह वो प्रतिज्ञा करते हैं मैं श्री भाष्य लिखूंगा, तो यानी वेदांत सूत्र के ऊपर टीका। तो जैसे वो प्रतिज्ञा दूसरा प्रतिज्ञा करते हैं उनका दूसरा उंगली खुल जाता है। और तीसरा उंगली पराशर मुनि यानी हमारे आचार्य में आते हैं जो वेद व्यास व्यासदेव के पिताजी माना पिताजी हैं। तो उन्होंने विष्णु पुराण लिखा है, तो बहुत बड़े उपलब्धि उससे हमें मिलती है, क्योंकि विष्णु पुराण में ऐसा आता है एक श्लोक कि भगवान को ये वर्णाश्रम के द्वारा अपने अपने कर्तव्य करते हुए भगवान को हम आनंद दे सकते हैं या उनको तृप्ति दे सकते हैं, इस तरह उन्होंने बताया। प्रभुपाद भी कोट करते हैं, हमारे किताबों में भी है विष्णु पुराण का श्लोक। तो पराशर मुनि के नाम से रामानुजाचार्य बोलते कि मेरा एक शिष्य का नाम है पराशर, उन्हें रखूंगा। तो इस तरह जब ये भी प्रतिज्ञा करते हैं तो उनका तीसरा उंगली खुल जाता है। तो इससे हम पता हमें समझ सकते हैं कि रामानुजाचार्य जबकि यमुनाचार्य चल बसे थे लेकिन उनके इच्छाओं को समझ सके, तो ये सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकते, केवल अलौकिक जो भगवान के परिकर है वही समझ सकते हैं। तो रामानुजाचार्य की मतलब उनकी भक्ति, उनकी शुद्धता इतनी थी कि वो किसी को छूने से भी उनके रोग चला जाते थे। जैसे भीष्म पितामह के पिताजी संतनु, उनके पास भी ऐसा एक ऐसा ये था, आप सिद्धि समझ लो कि जिनको भी छूते थे उनके रोग चला जाते थे। और रामानुजाचार्य के अंदर ऐसा था कि कोई भी मोहग्रस्त उनके जो शिष्य भक्तगण हैं उनके पास ऐसा शक्ति था वो कभी भी माया के मोहग्रस्त में फंस नहीं सकते थे। तो ये दो चीज रामानुजाचार्य के पास थे। तो रामानुजाचार्य जब भी उनके गुरु से मंत्र लेने जाते हैं तो वो गुरु मना करते हैं उनको मंत्र देने में, तो उन्हें 18 बार जाना पड़ता है एक्चुअली वो मंत्र देने। अभी तो आसान हो गया, गुरु को ज़्यादा ढूंढने का जरूरत नहीं इस काम में, तो इतने सारे ढेर सारे गुरु हैं, हम लोग जब करते हैं आसानी से सामने आ जाते हैं कोई ना कोई गुरु और दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स छोला माला करना ही पड़ता है हमें, लेकिन उस समय बहुत कठिन था क्योंकि वैष्णव इतने नहीं थे, थोड़ा कुछ थे, और इतना आसानी से भी दीक्षा नहीं देते थे। 18 बार जाते हैं, जैसे भक्तिवंश ठाकुर गोरकिशोरदास बौज महाराज के पास बार बार जाकर वो करते हैं, आग्रह करते हैं, फिर वो दीक्षा देते हैं। तो बड़ा मुश्किल से वो दीक्षा देते हैं उन्हें, तो लेकिन उनको आदेश देते हैं कि आप इस मंत्र को किसी को बताना नहीं, ये जो मन में भौतिक इच्छा है उनको ये मंत्र देना नहीं। तो इस तरह वो आदेश देते हैं, तो उनका आदेश का पालन करेंगे बोलते हैं। जैसे वो निकलते हैं बाहर तो वो सबको बुला लेते हैं, मैं एक बड़ा आपको धन देने वाला हूँ जो अलौकिक धन, सबको बुलाते हैं उस कांचीपुरम के सभी लोगों को। तो बुलाकर बोलते चलो मंदिर के पास आप लोग आओ और मैं आपको मंत्र दूंगा। मंदिर के ऊपर चढ़कर सबको मंत्र बताते हैं, क्योंकि रामानुजाचार्य के जो हृदय जो है ना करुणा से पिघलता है, क्योंकि उनके गुरु बताते हैं उन्हें कि ये मंत्र, गोष्ठीपूर्ण उनके गुरु का नाम था, ये मंत्र अगर जप करेंगे वो अवश्य भगवत धाम पहुँच जाएंगे। तो मंदिर के ऊपर चढ़कर सबको जोर जोर से चिल्लाकर बताती है ओम नमो नारायण आय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, इस तरह जोर से बोलते हैं और सब लोग इस मंत्र को लेते हैं और वो भगवान के प्रेम में मनोविवल हो जाते हैं। इसका कहने के साथ पर ये नहीं कि हम लोग भी वही जप करें, नहीं, ये कलयुग में खासकर अभी जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है प्रभुपाद ने हमें उसी को दोहराने के लिए बोला, हरे कृष्ण मंत्र में जप करना है। तो उस समय ये मंत्र था 1000 साल पूर्व, तो ऑफकोर्स हरे कृष्ण मंत्र भी था लेकिन उस समय उनके गुरु ये दिए वैसे कि सब भगवान के नाम हैं। तो सब लोग देखकर फिर वापस उनके गुरु के पास आते हैं वस्तु। तो जैसे उनके गुरु को पहले से पता चल जाता है कि रामानुजाचार्य ने उनका आदेश का उल्लंघन किया, बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं और उनको उनका मुख देखना भी नहीं चाहते हैं। तो उन्हें पूछते कि क्यों आपने ऐसा काम किया है, तो आप तो नरक जाएंगे ऐसा करने से। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं अगर मैं नरक गया और बाकी लोग सब भगवत धाम चले गए उससे बड़ा क्या उपलब्धि है। इस तरह जब ये बोलते हैं तो उनके गुरु महाराज से बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप मेरा एक्चुअली गुरु हो क्योंकि आप इस मंत्र का सार को समझे। तो इस तरह ऑफकोर्स रामानुजाचार्य उनके गुरु को गुरु ही मानते हैं, तो इस तरह उनका आलिंगन करते हैं रामानुजाचार्य का गोष्ठीपूर्ण। फिर रामानुजाचार्य बताते हैं बोलते हैं कि ये आपका आलिंगन इतना आसान नहीं है, यू नो, आपका एम्ब्रेस आपने दिया है जो देवताओं को भी संभव नहीं है। तो इस तरह वो अपने गुरु महाराज उनके बेटे को रामानुजाचार्य का शिष्य बना देते हैं और वो चला जाते हैं। तो इस तरह रामानुजाचार्य का बहुत सारे लीला है, एक किताब है उसका नाम है द लाइफ ऑफ रामानुजाचार्य, अंग्रेजी में उसमें पूरा लीला है उसके, उनके जीवन के बारे में लिखा है। तो आज का दिन उनके आविर्भाव के दिन हम रामानुजाचार्य को प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें अपने भक्ति में आगे बढ़ाए और वैष्णव का संग में वैष्णव का सेवा में रहते हैं। तो हम एक वैष्णव भजन गाएंगे, आप लोग इसको दोहराएंगे। ओए वैष्णव ठाकुरा वयरा सागरा यदा से करो ना कोरी, ओए वैष्णव ठाकुरा
Thank you.
श्रीमद् भगवान भागवतम की ब्रह्मचार की जय। वर्तमान